ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारद भागवतम छठा स्कंद स्कंद नौवा अध्याय वृत्रासुर का आविर्भाव श्लोक संख्या 50। स्वयं श्रेयसं विद्वान् न वक्त्यज्ञाय कर्महि नरातिरोगिणोपथ्यम् वांछतोपि भिषक्तमः। स्वयं स्वतः अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। भक्ति योग में दक्ष शुद्ध भक्त कभी भी मूर्ख पुरुष को भौतिक सुख के लिए सकाम कर्म करने का उपदेश नहीं देगा। ऐसे कार्यों में सहायता करना तो दूर है। ऐसा भक्त उस अनुभवी वैद्य के समान है जो रोगी के चाहते हुए भी उसे उपथ्य ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता। तात्पर्य, देवताओं द्वारा तथा श्री भगवान विष्णु द्वारा प्रदत्त वरों में यही अंतर है। देवों के भक्त इंद्रिय तृप्ति के लिए वर मांगते हैं, इसीलिए भगवद गीता के 7वें अध्याय के 20वें श्लोक में इन्हें बुद्धि से विहीन कहा गया है। कामैस्तैस्तैर्हितज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियतः स्वया। कामनाओं ने जिनके ज्ञान को हर लिया है वे ही अन्य देवताओं को देवताओं की शरण लेकर अपने स्वभाव के अनुसार उपासना के विधि विधान का पालन करते हैं। प्राय बुद्धि विहीन होते हैं क्योंकि उनमें इंद्र तृप्ति के लिए तीव्र इच्छा रहती है। वे यह नहीं जानते कि कौन सा वर मांगा जाए, इसीलिए शास्त्रों में उपदेश दिया गया है कि अभक्त जन भौतिक लाभों के लिए देवताओं की पूजा करें। उदाहरणार्थ, यदि कोई सुंदर पत्नी चाहता है तो उसे उमा या देवी दुर्गा की पूजा करने की सलाह दी जाती है। यदि कोई रोग से मुक्त होना चाहता है तो उसे सूर्य देव की पूजा करने को कहा गया है। किंतु देवताओं से वर प्राप्त करने की समस्त प्रार्थनाएं भौतिक काम वासना के कारण हैं। ये वर दृश्य जगत के अंत होते ही वर देने वाले के साथ साथ समाप्त हो जाएंगे। यदि वर प्राप्त करने के लिए कोई भगवान विष्णु के पास जाता है तो वे ऐसा वर देते हैं जिससे वह भगवान के धाम वापस जा सकता है। इसकी पुष्टि स्वयं भगवान ने भगवद गीता में 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में की है। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन माम उपयान्ति ते। भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण उस भक्त को जो निरंतर उनकी सेवा करता है उपदेश देते हैं कि इस भौतिक देह की समाप्ति पर उन तक किस प्रकार पहुंचा जाए। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 8वें चौथे अध्याय के 9वें श्लोक में कहते हैं, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मनेति मामेति सोऽर्जुना। हे अर्जुन, मेरा आविर्भाव और कर्म दिव्य है। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जानता है वह देह को त्याग कर संसार में फिर जन्म नहीं लेता, वरन मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। यही भगवान कृष्ण विष्णु या कृष्ण का वर है। शरीर त्यागने के बाद भक्त भगवान के धाम को जाता है। भक्त मूर्खतावश भौतिक वर मांग सकता है, किंतु भक्त की प्रार्थनाओं के बावजूद भगवान श्री कृष्ण ऐसा वर नहीं देते। इसलिए जो लोग भौतिक जीवन के प्रति अत्यधिक आसक्त हैं, वे सामान्यतः कृष्ण या विष्णु के भक्त नहीं बनते, अपितु वे देवताओं के भक्त बन जाते हैं। कामैस्तैस्तैर्हितज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवताः। किंतु भगवद्गीता में देवताओं द्वारा दिए गए वरों की निंदा की गई है। अंतवत्तु फलं तेषां तद्भवति अल्पमेधसाम। अल्पज्ञ मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं, उनके फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। वैष्णव को अल्प बुद्धि वाला मूर्ख माना गया है। अनुवाद को दोहराइए। अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। इस श्लोक और तात्पर्य में देवताओं के उपासक और भगवान श्री कृष्ण के भक्तों के बीच में जो अंतर है उसका वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण के अलावा तरह तरह की उपासना के केंद्र बिंदु अनेक देवता हैं, करोड़ों करोड़ों देवता हैं, और इनकी उपासना करने के लिए करोड़ों करोड़ों ऐसे व्यक्ति हैं जो इस भौतिक जगत से आसक्त हैं, जिनके हृदय में भौतिक कामनाएं और वासनाएं हैं, और ऐसे लोगों की सुविधा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने देवी देवताओं की उपासना की पद्धति का निर्माण किया है। जो देवताओं की उपासना करते हैं, जैसे कि श्री कृष्ण गीता में बताते हैं और जिस श्लोक को यहां पर श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं, कामैस्तैस्तैर्हितज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमम आस्थाय प्रकृत्य नेतः स्वया, कि केवल वही लोग देवताओं की उपासना करते हैं जो कि भौतिक इच्छा के शिकार हो चुके हैं, जिनके हृदय में तरह तरह की वासनाएं उमड़ रही हैं, और देवताओं के सामने जब ये उपासक जाते हैं और देवताओं को तरह तरह के यज्ञों से उपासनाओं से संतुष्ट करते हैं, तो ये देवतागण भी प्रसन्न हो जाते हैं और उनके इच्छाओं को पूर्ण करने में बाध्य हो जाते हैं। जब देवताओं की उपासनाओं को उपासकों को इन इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है, तो ऐसे नहीं है कि वो अपनी इच्छाओं को भूल जाते हैं, बल्कि उनकी इच्छाएं बढ़ जाती हैं, कभी संतुष्ट नहीं होते हैं। कभी कभी ऐसे देखा जाता है कि ये उपासक अपने आराध्य देव के खिलाफ ही कोई कार्य कर बैठते हैं। जैसे भस्मासुर ने शिवजी की हत्या करने का प्रयास किया, शिवजी से ही उन्होंने वर प्राप्त किया, और जब वर की प्राप्ति हो गई तो शिवजी को ही मार डालने का प्रयत्न किया। तो ये ऐसे कई बार देखा जाता है, तो इसको भक्ति नहीं कहते हैं, नहीं ये आध्यात्मिक है, ये तो भौतिक क्षेत्र के भीतर ही माना जाता है। इसके विपरीत जो शुद्ध भक्त भगवान श्री कृष्ण की उपासना करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, और जिस सेवा में बिल्कुल कोई भौतिक कामना नहीं है, वो भक्ति श्रेष्ठ है और ये पूरी तरह से आध्यात्मिक मानी जाती है, क्योंकि इसमें कोई भौतिक कलमश नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण भी अपने शुद्ध भक्तों की आध्यात्मिक इच्छाएं पूर्ण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का संबंध उनके भक्तों के साथ जो है, और दूसरी ओर देवताओं का संबंध जो उनके उपासकों के साथ है, इन दोनों संबंधों में अंतर एक है जो एक शब्द में कहा जा सकता है और वो है प्रेम। श्री कृष्ण और भक्तों के बीच में प्रेम का संबंध है, इसलिए इसको भक्ति कहते हैं। परंतु जो देवताओं के उपासक हैं, उनका जो संबंध उनके आराध्य देवों के साथ है, वो संबंध है व्यवसाय का। देते हैं किसी को और उसके बदले में किसी भौतिक चीज लेते हैं। तो भस्मासुर जैसे लोग या रावण जैसे लोग या हिरण्यकश्यप जैसे लोग ऐसे देवताओं की उपासना करते हैं, लेकिन इस उपासना के पीछे एक स्वार्थ है, भौतिक इच्छा है। अगर किसी दूसरे देवता से वही चीज और अच्छी तरह से मिलता तो आसानी से बिना कोई दो बार सोचे हुए वो उस देवता को त्याग करके उस तीसरे देवता के पास जाते, तो ये प्रेम नहीं है। तो दोनों संबंधों में अंतर ये है। और जो सच्चा प्रेम है वो आध्यात्मिक है, इसलिए वो टिकाऊ है, बना रहता है। लेकिन जो भौतिक संबंध है, भौतिक कामना के ऊपर निर्भर होता है, वो टिकाऊ नहीं है। इसलिए वो एक देवता को छोड़कर दूसरे के पास जाएगा, दूसरे को छोड़कर तीसरे के पास जाएगा। जिस प्रकार से एक व्यापारी जब देखता है कि किसी दूसरे व्यवसाय में कोई अच्छा मुनाफा आता है तो पहले को त्याग कर दूसरे को स्वीकार करता है, उसी प्रकार से ये देवताओं के उपासक होते हैं, एक को त्याग कर दूसरे के पास जाते हैं। जहां भी उनकी इच्छा की पूर्ति अच्छी तरह से हो सके वहां पर जाते हैं। उस व्यक्ति से उनको मतलब नहीं है, अपने इच्छा की पूर्ति से उनको मतलब है। जहां इच्छा की पूर्ति होगी वो वहां पर जाएंगे। तो देवताओं की उपासना करके जो वरदान प्राप्त होते हैं उनसे भोग करने की इच्छा कम नहीं होती बल्कि बढ़ जाती है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण, जैसे कि यहां बताया गया है, वो अपने कच्चे भक्तों की भौतिक इच्छा पूर्ण नहीं करते साधारणतः। और शुद्ध भक्ति को तो भक्तों की तो भौतिक इच्छा होती ही नहीं है, तो उनके भौतिक इच्छा पूर्ण करने का सवाल ही नहीं उठता है। तो जो भौतिक इच्छाएं होती हैं एक कृष्ण भक्त के अंदर, और जिस तरह श्री कृष्ण उसके साथ बर्ताव करते हैं, ये एक तरफ रखेंगे। और दूसरी तरफ जो भौतिक इच्छा एक देवता के उपासक में है और जिस प्रकार देवता उस इच्छा को पूर्ण करते हैं, इन दोनों का विश्लेषण करना अच्छा है। देवता जो होता है, देवता मतलब जो एक जैसे जन और जनता, तो ये एक प्रकार से बहुवचन हो गया, जन और जनता, तो देव और देवता। जो देवता गण हैं वो आसानी से अपने उपासकों की इच्छा पूर्ण कर देते हैं, ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि उनको भी कुछ मिल रहा है, उनको भी यज्ञ के फल मिल रहे हैं भोग करने के लिए, तो तुरंत ही वो दे डालते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ऐसे नहीं है। अगर उनका कोई भक्त कोई भौतिक इच्छा के लिए उनके पास आता है तो ऐसा नहीं है कि कृष्ण तुरंत उनको दे देंगे। इसमें अंतर होता है। अंतर ये है कि जो देवता है वो एक दुकानदार के समान है, जो कि एक छोटे बच्चे को भी पैसे मिलने पर, पैसे देने पर वो सिगरेट बीड़ी कुछ दे देता है, क्योंकि दुकानदार को पैसे से मतलब है, उसको पैसे मिल जाता है, वो जानता है कि बच्चे को बीड़ी सिगरेट नहीं लेना चाहिए, लेकिन जब तक उसको पैसा मिल रहा है वो खुशी से वो बीड़ी सिगरेट दे देगा। लेकिन माता पिता ऐसे नहीं करेगा बच्चे के साथ। अगर बच्चा आके पिताजी को पूछेगा कि मुझे बीड़ी सिगरेट चाहिए, तो पिताजी दो थप्पड़ मार के उसको भेज देगा, उसकी इच्छा पूर्ण नहीं करेगा, क्योंकि पिता के हृदय में बच्चे के प्रति प्रेम है। तो वो देखता है कि उस बच्चे के भलाई के लिए क्या है, वही करता है। लेकिन देवता कभी ये नहीं देखते कि मेरे उपासक के भलाई के लिए क्या है, उपासक के हित को नहीं देखते हैं। देवता भी अपना ही हित देखते हैं साधारणतः, परंतु श्री कृष्ण अपने भक्तों के हित को देखते हैं। हाँ, भगवान श्री कृष्ण भी कभी कभी भौतिक सुविधा ऐश्वर्य इत्यादि देते हैं, लेकिन कब देते हैं और किसको देते हैं? केवल उस भक्त को देते हैं जो कि बिल्कुल शुद्ध हो चुका है, जो बिल्कुल काम वासनाओं को त्याग कर चुका है, उसको फिर छप्पर फाड़ के भगवान दे सकते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इस समय ये मेरा भक्त इस धन का, इस ऐश्वर्य का दुरुपयोग नहीं करेगा। जिस प्रकार जब एक व्यापारी होता है और उसका एक लड़का होता है, जब तक उसका लड़का कच्चा होता है, अभी तक व्यवसाय में परिपक्व नहीं होता, जब तक दुनियादारी में वो निपुण नहीं होता, तब तक जो व्यापारी है बहुत कड़क नजर रखता है उस लड़के के ऊपर, क्या लेन देन कर रहा है, कैसे बात कर रहा है, क्या खरीद रहा है, क्या बेच रहा है, पैसों का व्यवहार कैसे करता है, किस तरह से पैसे रखता है, हिसाब किताब कैसे रखता है, बहुत ध्यान से देखता है, और तिजोरी की चाबी नहीं देता उसको, तिजोरी की चाबी अपने पास रखता है, फिर थोड़ा थोड़ा सा दे देता है लड़के को। लेकिन जब देखता है कि बच्चा अभी परिपक्व हो गया है, अब बड़ा अकलमंद हो गया है और अभी तैयार है वो मेरा व्यवसाय संभालने के लिए, तो पिताजी तिजोरी की चाबी लेते हैं, लड़के को दे देते हैं, अब तुम संभालो, तुम करो व्यवसाय। और केवल जब जरूरत पड़ती है, अगर देखते हैं कि ठीक है अभी भी कोई गलती कर रहा है, तो बीच में पिताजी आके बोल दे, अब बैठे को इसके बारे में थोड़ा सावधान रहना, लेकिन पूरी स्वतंत्रता वैसे दे देते हैं। जबकि लड़का अब तैयार हो गया है, बड़ा हो चुका है। यहां पर एक उदाहरण दिया गया है एक वैद्य का, एक दूसरा उदाहरण है। जब वैद्य किसी रोगी को दवाई दे रहा है, उसको ठीक करने का प्रयास कर रहा है, तो अच्छा वैद्य जो होता है वो बहुत सावधान रहता है। अगर उस रोग को नष्ट करने के लिए किसी पथ्य का पालन करना आवश्यक होता है, मान लो कि किसी को बताया जाता है कि आपको आम नहीं खाना चाहिए, आपको मीठी चीज नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे आपका रोग बढ़ जाएगा, लेकिन अगर रोगी के मन में बहुत इच्छा है, रोगी को आम खाना, मीठा खाना बहुत पसंद है, और वो वैद्य के पास जाकर कहेगा कि मुझे केवल एक आम रोज खाने दीजिए आप और एक मिठाई रोज, तो वैद्य कहेगा नहीं, क्योंकि अब ये तुम्हारे लिए बहुत हानिकारक है, अब तुम्हें अवश्य इन चीजों को नहीं खाना चाहिए, खाओगे तो बहुत बुरा होगा तुम्हारा। और रोगी बेचारा आके रोता है वैद्य के सामने, प्लीज हमको दीजिए, कृपया एक आम हमको खाने दीजिए। तो वैद्य को थोड़ा क्रूर होना पड़ता है, नहीं, एक आम का टुकड़ा भी नहीं खा सकते, इतना सा भी मिठाई नहीं खा सकते। बाहरी दृष्टि से देखा जाए तो अरे ये वैद्य कितना क्रूर है, थोड़ा सा भी इसको खाने नहीं दे रहा है, लेकिन इसके पीछे प्रेम है, वो चाहता है कि ये ठीक हो जाए मेरा मरीज, क्योंकि अभी ये झूठे दया दिखाऊंगा तो इसका नुकसान हो जाएगा। लेकिन वैद्य जो है उस मरीज को आम और जो मिठाई है वो खाने देंगे, लेकिन कब? जब वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा बीमारी से, जब रोग पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा और अब उसका शरीर बिल्कुल ठीक है और अब आम और मिठाई खाने से उसका कोई नुकसान नहीं होगा, तब वैद्य कहते हैं ठीक है अब तुम खाओ। ठीक उसी प्रकार से जब शुरुआत में भगवान श्री कृष्ण के पास कोई भक्त जाता है और देही देही करके जाता है, मुझे दो, मुझे ये दो, मुझे वो दो, तो भगवान श्री कृष्ण शायद नहीं देते, लेकिन जब वो देखते हैं कि अब इसका भौतिक रोग पूरी तरह से ठीक हो गया है, भौतिक कामनाएं नष्ट हो गई हैं, और अगर इसके पास कोई धन आए भी, कोई भौतिक भोग की सुविधा आए भी, तो इसका दुरुपयोग नहीं करेगा, अब इसकी हानि नहीं होगी, इसका कोई नुकसान नहीं होगा, तो फिर भगवान सोचते हैं ठीक है अब इसको दिया जाए, क्योंकि ये धन का सही उपयोग करेगा, केवल मेरे सेवा में इसका उपयोग करेगा, तब भगवान उसको दे देते हैं। और फिर इतना देते हैं कि वो भक्त उसको शायद संभाल भी नहीं पाए, जैसे कि उन्होंने सुदामा को दिया था। सुदामा को ऐसा ऐश्वर्य उन्होंने दिया कि सुदामा भी बिल्कुल आश्चर्यचकित रह गए। कहा जाता है कि युधिष्ठिर महाराज के पास इतना ऐश्वर्य था कि स्वयं इंद्रदेव भी ईर्ष्या करने लगे युधिष्ठिर महाराज के राज्य को देखकर। इंद्रदेव का ऐश्वर्य कितना है स्वर्गलोक के अंदर। लेकिन भगवान कृष्ण की कृपा से युधिष्ठिर महाराज के पास ऐसी संपत्ति आ गई जिससे जिसको देखकर इंद्रदेव भी जलने लगे। तो वो जानते थे कि युधिष्ठिर महाराज एक स्थिर व्यक्ति हैं और बिल्कुल धीर होने की वजह से कभी इस धन और ऐश्वर्य का दुरुपयोग नहीं करेंगे, इसलिए उन्होंने इतना बड़ा राज्य उनको दे दिया, राजसूय यज्ञ में उनको सफल बना दिया, क्योंकि वो जानते थे कि ये मेरे शुद्ध भक्त हैं, कोई कामना उनके हृदय में नहीं है। उसी प्रकार से ध्रुव महाराज जब श्री कृष्ण के पास आए तो उनके हृदय में भौतिक कामना थी, बहुत कुछ चाहते थे, ऐसा कुछ चाहते थे जो कि कोई साधारण व्यक्ति भी नहीं मांगता है। जो साधारण व्यक्ति दुनिया में है, जो कि देवताओं के पास जाता है या भगवान के पास भी जाता हो कोई भौतिक इच्छा के लिए, वो कोई व्यक्ति ऐसा कोई मांग नहीं रखता भगवान के सामने या देवता के सामने कि मैं सारे ब्रह्मांड का राजा बनना चाहता हूं। वो ज्यादा से ज्यादा मांगेगा कि मैं इस देश का राजा बनना चाहता हूं या पृथ्वी का राजा बनना चाहता हूं। लेकिन शायद आजकल के लोग ऐसे सोच भी नहीं सकते हैं कि हम कोई ब्रह्मांड का राजा बन सकते हैं। लेकिन ध्रुव महाराज ब्रह्मांड के राजपद को प्राप्त करना चाहते थे, अपने परम पिता ब्रह्मा जी से भी एक श्रेष्ठ पद या स्थान वो स्वीकार करना चाहते थे। तो जब वो तपस्या करने लगे एक शुद्ध भक्त नारद मुनि के आदेशानुसार, तो धीरे 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 से उनका हृदय शुद्ध होते गया। भगवान ने देखा कि ये तो मेरे शुद्ध भक्त के शरण में आ गया है, तो इसके सामने प्रकट होना मेरे लिए आवश्यक है। तो जब भगवान श्री कृष्ण प्रश्नि गर्भ के रूप में ध्रुव महाराज के सामने प्रकट हुए, तो उस समय ध्रुव महाराज का हृदय पूरी तरह से शुद्ध हो गया और जितने भी भौतिक इच्छाएं ध्रुव महाराज के हृदय में थीं, वो सब खत्म हो गया और शुद्ध कृष्ण प्रेम ध्रुव महाराज के हृदय में जागृत हो गया और प्रेम के आंसू ध्रुव महाराज के आंखों से बहने लगी और वो अपने आप को मूर्ख समझ लगे कि वास्तव में मुझे अब एक अनमोल रत्न प्राप्त हुआ है। मैं कितना मूर्ख था कि मैं टूटे हुए कांच के टुकड़ों के पीछे भाग रहा था। तो जब भगवान ने पूछा ध्रुव से कि अब तुम्हें क्या चाहिए, तो ध्रुव महाराज ने कहा मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, आपने मुझे आपका दर्शन दिया है और इस दर्शन मात्र से मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूं, मेरा हृदय पूरी तरह से शांत हो गया है, अब कोई इच्छा मुझे नहीं है। लेकिन भगवान ने कहा कि नहीं, तुम इच्छा की पूर्ति के लिए मेरे पास आए थे, अब मैं तुम्हें भौतिक सुविधा और ऐश्वर्य देकर ही रहूंगा। क्योंकि अब तो ध्रुव महाराज पूरी तरह से शुद्ध हो गए थे, अब कोई डर नहीं था कि ये धन का दुरुपयोग कर लेंगे ध्रुव महाराज। इसीलिए भगवान ने ध्रुव महाराज को वरदान दिया कि तुम 36,000 वर्ष तक यहां पर राज्य करोगे, तुम्हारे पिता के स्थान में पिता के बाद तुम राज्य संभालोगे और 36,000 वर्ष के अंत तक भी तुम्हारा शरीर क्षीण नहीं होगा, तुम्हारी इंद्रियां उतनी ही प्रबल होंगी जितना कि अब हैं और तुम खूब भौतिक सुख का लाभ उठा पाओगे। परंतु मैं भी ये तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम माया में कभी नहीं पड़ोगे। हालांकि तुम्हारे पास इतना ऐश्वर्य होगा, इतनी संपत्ति होगी, इतना ऊंचा पद होगा, फिर भी तुम भ्रमित नहीं हो जाओगे, तुम मेरे चरण कमलों में ही हमेशा स्थित रहोगे। ऐसा वरदान उन्होंने ध्रुव महाराज को दिया। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा इतना भोग मैं तुम्हें दे रहा हूं 36,000 साल के लिए, और इसके बाद मैं तुम्हें और भी एक बड़ा वरदान दूंगा, और वो क्या है कि तुम मेरे वैकुंठ जगत में वापस आओगे। तुम्हारे लिए मैंने एक विशेष लोक तैयार किया, मेरा निजी धाम मैंने तुम्हें दिया है, ध्रुव तारा, ध्रुव लोक। और ये ध्रुव लोक ऐसा है जो कि वैकुंठ जगत है इस ब्रह्मांड के भीतर। जब ये ब्रह्मांड का नाश होगा तब ये ध्रुव लोक नहीं नाश का नाश नहीं होगा। तो 36,000 साल यहां पर भोग करके तुम्हें ध्रुव लोक की प्राप्ति होगी। तुम्हें एक ऐसा पद मिलेगा जो आज तक मैंने किसी भी मेरे भक्त को नहीं दिया है, एक विशेष स्पेशल जो लोक तुम्हारे लिए तैयार किया है मैंने। वहां रहो जब तक कि ये ब्रह्मांड का नाश ना हो, और ब्रह्मांड का नाश होने के लिए तो अब करोड़ों करोड़ों साल बाकी। तो पहले 36,000 साल यहां, फिर करोड़ों साल वहां, और जब ब्रह्मांड का नाश हो जाएगा वैसे भी तुम मेरे वैकुंठ जगत में वहां पर जाओगे और मेरे साथ सनातन रहोगे। तो जब भगवान श्री कृष्ण देखते हैं कि किसी का हृदय पूरी तरह से शुद्ध हो गया है, तो वो इतना देते हैं उस भक्त को कि भक्त उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। ध्रुव महाराज ने ऐसे वरदान की कल्पना नहीं की थी। भगवान ने सोचा कि ये मेरा बच्चा है, मेरा भक्त है, मेरे पास आया है, वो ब्रह्मा जी से श्रेष्ठ पद मांग रहा है। तो ब्रह्मा जी से श्रेष्ठ पद कौन सा है, और कौन है ब्रह्मा जी से श्रेष्ठ इस जगत में? एक ही व्यक्ति, और वो मैं हूं, इसलिए मेरा ही पद उसको देना चाहिए। लेकिन वो भगवान तो नहीं बन सकता। जब वो भगवान नहीं बन सकता, कम से कम भगवान का धाम तो उसको मिलना चाहिए। तो फिर मुझे मेरा धाम ही उसको दे देना चाहिए इस भौतिक जगत के भीतर। तो इस प्रकार से जब भक्त परिपक्व हो जाता है तो भगवान सब कुछ उसको दे देते हैं। लेकिन अगर भगवान देखते हैं कि मेरा भक्त अभी तक कच्चा है, अगर उसको मैं पद दूंगा, मैं कुछ ऐश्वर्य दूंगा, कुछ ऐसे सुविधा दूंगा, अगर इस सुविधा से प्रभावित होकर ये डामाडोल हो जाएगा तो फिर भक्ति से पद भ्रष्ट हो जाएगा। तो ये ठीक नहीं है, उसके हित के लिए नहीं है, उसके भलाई के लिए नहीं है। इसलिए मैं थोड़ा रोक लूंगा इन सब चीजों को। और जैसे जैसे ये मेरा मूर्ख भक्त प्रगति करता है मेरे भक्ति मार्ग में, वैसे वैसे शुद्ध हो जाएगा और फिर कभी भी मेरे पास कोई भौतिक इच्छा लेकर नहीं आएगा। चैतन्य चरितामृत में भी कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि कृष्ण भगवान कैसे सोच रहे हैं, और जो भौतिक इच्छा लेकर भगवान कृष्ण के पास आता है तो भगवान श्री कृष्ण कैसा बर्ताव करते हैं उस व्यक्ति के साथ। अन्य काम यदि करे कृष्ण रे भजन, न मांगते है तारे देन कृष्ण स्वचरण। कृष्णदास कविराज कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कृष्ण कामी न होकर अन्य कामी है और इस अन्य इन कामनाओं को पूर्ण करने के लिए वो श्री कृष्ण के पास जाता है, कृष्ण का भजन करता है, अन्य कामी यदि करे कृष्ण रे भजन, तो श्री कृष्ण क्या करते हैं? न मागीते है तारे दैन स्वचरण। कृष्ण स्वचरण उस भक्त को दे देते हैं। हालांकि वो भक्त स्वचरण कृष्ण के चरण को मांगने के लिए नहीं आया है, वो कुछ अन्य कामना लेकर कृष्ण के पास आया है, लेकिन कृष्ण का भक्त है, सकाम भक्त है। लेकिन श्री कृष्ण देखते हैं कि ये मेरे पास आया है, ये मेरा भक्त है, कोई भौतिक कामना लेकर आया है, तो भौतिक कामना की पूर्ति नहीं करते हैं, क्या करते हैं? अपना निजी चरण उस भक्त को दे देते हैं। हालांकि वो भक्त नहीं मांग रहा है, वो भक्त भगवान के पास भगवान के चरण कमल मांगने के लिए नहीं आया, लेकिन फिर भी भगवान जबरदस्ती उसको थमा देते हैं, दे देते हैं। और फिर कृष्ण सोचते हैं कि ये भक्त जो है ये मेरे पास विशेष सुख प्राप्त करने के लिए आया है। कृष्ण कहे आमा भजे मागे विशेष सुख, अमृत छाड़ी विष मागे ए बड़ो मूर्ख। कृष्ण कह रहे हैं, अपने मन में कृष्ण भगवान सोचते हैं कि ये जो मेरा भक्त है विशेष सुख मांगने के लिए मेरे पास आया है, इस संसार का भोग मांगने के लिए आया है, जो कि विषय के समान है, विष के समान है। विषय और विष, ये दोनों में संबंध है। विषय मतलब क्या? ये संसार के भोग के वस्तु, जिन चीजों का भोग करने के लिए हर व्यक्ति चाहता है वो विषय है। तो विषय सबसे बड़ा विष होता है, साधारण विष से बहुत भयंकर होता है। क्यों? क्योंकि जो साधारण विष है जिसका पान लोग करते हैं आत्महत्या करने के लिए, तो उस विष का पान करने से ज्यादा क्या होगा, क्या हो सकता है? यह शरीर नष्ट हो सकता है। लेकिन विषय का पान करने से क्या हो सकता है? बार बार शरीर नष्ट होता है, बार बार जन्म लेना पड़ता है। थोड़ा सा विष, डीडीटी या कुछ, वो चूहे का पॉइजन विष पीने से आदमी का ये शरीर नष्ट हो जाएगा, लेकिन जो इंद्रिय तृप्ति के विषयों का पान करने से, उनका भोग करने से, भोग वृत्ति रहने की वजह से व्यक्ति को बार बार जन्म लेना पड़ता है। और बार बार जन्म लेने का मतलब है कि बार बार मर भी जाना, तो बार बार शरीर नष्ट हो जाते हैं। तो कितने शरीरों को नष्ट होना पड़ता है देखिए। तो विषय है, ये विष से भी ज्यादा जबरदस्त होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये मेरे पास आया है विष मांगने के लिए, विषय का विष मांगने के लिए मेरे पास आया है। अमृत जो कि मेरी भक्ति है, इस अमृत को छोड़कर ये विष मांग रहा है। इसलिए सबसे बड़ा मूर्ख है ये लड़का, ये बच्चा। अमृत छाड़ी विष मांगे, ये बड़ा मूर्ख भगवान कृष्ण सोचते हैं। लेकिन फिर भी उनका ही बच्चा है, कभी कभी बच्चा भी मूर्ख होता है, फिर भी देखभाल करना पड़ता है। तो फिर भगवान श्री कृष्ण सोचते हैं, आमी विज्ञ ए मूर्खे विषय कैनो दिबो। वो तो मूर्ख है, लेकिन मैं तो मूर्ख नहीं हूं, मैं तो बड़ा विज्ञ हूं, मैं तो बड़ा बुद्धिमान हूं। इसलिए मैं इस मूर्ख बच्चे को मैं ये इंद्र तृप्ति क्यों दूं, उसकी भौतिक कामना की पूर्ति मैं क्यों करूं? मैं उसको मेरे चरण कमल स्वतः दे दूंगा। तो ये भगवान श्री कृष्ण की कृपा है। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त को धीरे 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 से अपनी शुद्ध भक्ति प्रदान करते हैं, अपने चरण कमल स्वतः दे देते हैं। बल्कि जो देवता हैं वो कभी ऐसा नहीं करते। अगर कोई व्यक्ति बिना भौतिक कामना के उस देवता की उपासना करता है, तो दो चीजें हो सकती हैं। या तो वो व्यक्ति उस देवता के लोक में वापस जाएगा मृत्यु के बाद, या तो वो देवता उसको कृष्ण के पास ले जाएगा। दोनों में से एक चीज हो सकते हैं। अगर उसके पास कोई भक्ति की सुकृति है, तो फिर वो जो देवता है उस उपासक को कृष्ण भक्तों से मिला देंगे। लेकिन अगर ऐसी सुकृति नहीं हो, तो फिर उसे उस देवलोक में पुनर्जन्म लेना पड़ेगा, और वहां पे बहुत भोग करके पुनः उसको यहीं पर भौतिक इस पृथ्वी लोक में जन्म लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार से देवता और उनके उपासक एक ओर, श्री कृष्ण और उनके भक्त दूसरी ओर, इन दोनों के बीच में संबंध में अंतर यही है। तो जिस प्रकार से श्री कृष्ण भी अपने भक्तों की, कच्चे भक्तों की भौतिक इच्छा की पूर्ति नहीं करते, उसी प्रकार से उनके भक्त भी ऐसे ही हैं। जो शुद्ध भक्त होते हैं वो भी अन्य लोगों को विषय भोग के मार्ग में प्रेरित नहीं करते हैं। मदद करने की बात तो दूर है, लेकिन उनको ऐसा भी कोई मार्गदर्शन नहीं करते हैं जिससे कि वो और भौतिक भोग के पथ में आगे बढ़े। उनका सलाह यही रहता है कि किस तरह से इस भौतिक भोग का जो आसक्ति है वो मिट जाए, और कैसे ये व्यक्ति श्री कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्त करे, यही शुद्ध भक्तों की इच्छा होती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। कोई प्रश्न यह है कि कई बार भक्ति में ऐसे लोग आते हैं, कोई भौतिक कामना हृदय में रहती है, और फिर उनको कुछ मान सम्मान ऐश्वर्य कुछ ऐसे धन मिल जाता है, और जिसकी वजह से उनका पतन भी हो सकता है कभी कभी, तो ऐसे क्यों भगवान करते हैं? पहली बात कि भगवान ये भी देखते हैं कभी कभी कि इस भक्त को भक्ति में आगे प्रगति करने के लिए क्या आवश्यक है। अगर थोड़ा कुछ प्रलोभन उसको आवश्यक होता है जिसको पाके उसकी श्रद्धा बढ़ जाती है तो फिर भगवान कभी दे भी सकते हैं। हालांकि भगवान के लिए ये ऐसे कोई फॉर्मूला नहीं है कि भगवान को जबरदस्ती करना चाहिए। अगर भगवान सोचते हैं कि इसके लिए ऐसी इच्छाओं की पूर्ति करना आवश्यक है ताकि उसकी श्रद्धा बढ़े और फिर वो धीरे धीरे से भक्ति में बढ़ जाए, तो भगवान ऐसा कभी कभी थोड़ा बहुत दे देते हैं। लेकिन अगर इस ऐश्वर्य या मान को प्राप्त करने के बाद अगर वो भक्त थोड़ा इधर उधर भटक जाता है या भक्ति से दूर हो जाता है, उसके अंदर घमंड आ जाता है, तो फिर से भगवान उसको कान पकड़ लेते हैं। जब हम कहते हैं कि भक्त का पतन हो गया, एक दृष्टि से कहा जाए तो भक्त का कभी पतन नहीं होता, केवल थोड़े समय के लिए वो थोड़े दूर जा सकता है। जैसे एक माता या कभी अपने बच्चे को कान ऐसे पकड़ती है, जब कोई वो शरारत करता है उसको डांटती है, बच्चे को बहुत गुस्सा हो जाता है माँ के प्रति, फिर थोड़े समय के लिए वो माँ से दूर चले जाता है, माता पिता से बात नहीं करता है, सोचता है कि मुझे देखना भी नहीं है माता पिता को। लेकिन वास्तव में कभी छोड़ के नहीं जा सकता वो, जब उसका गुस्सा कम हो जाएगा फिर से वापस चले आएगा, जब भूख लग जाएगी वापस आ जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से जो भगवान की भक्ति में एक बार लगे हुए हैं हमेशा के लिए, कभी भी वो छोड़ के नहीं जा सकते भगवान को, उनको आना ही होगा, आज नहीं तो कल। लेकिन ये पतन का समय जो है ये एक शिक्षा का समय है, जब भगवान उनके हृदय का शुद्धिकरण करेंगे। जो दुख उनको उस समय होगा जबकि उनका भक्ति से पतन हो जाएगा, उस दुख से, उस कष्ट से, उस कष्ट के अग्नि में उसके जितने भी सारे अब और अन्य कामनाएं हैं वो सब जल जाएंगे, राख हो जाएंगे। फिर ऐसे शुद्धिकरण से फिर से वो भगवान के पास आएगा कि इस बार हम नहीं मांगेंगे। तो भगवान इस प्रकार से उसको शुद्ध करते हैं, धीरे 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 से देते हैं डोज, छोटे 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 डोज देते हैं, फिर वो शुद्धिकरण भी कराते हैं अपनी तरह से। माइक नहीं चल रहा है।
ध्रुव महाराज को जो वरदान दिया था, क्या असलियत में वो वरदान के समान है? क्योंकि उनको 36,000 साल तो यहीं रहना था, उसके बाद उन्हें ध्रुव लोक दिया था, और ऐसा बताया कि ध्रुव लोक भी वैकुंठ धाम का अंग है, तो फिर उसके बाद उन्हें बताया कि जब सृष्टि का नाश हो जाएगा उसके बाद वो वैकुंठ लोक में आएंगे। तो एक जगह बताया कि वो वैकुंठ लोक का अंग भी है और उसके बाद बताया कि वैकुंठ लोक में आएंगे। तो
हाँ, ध्रुव तारा भी वैकुंठ लोक ही है, परंतु इस भौतिक ब्रह्मांड के भीतर का वैकुंठ लोक है। और जब ये भौतिक सृष्टि का नाश हो जाएगा उस समय ध्रुव महाराज वहां उस वैकुंठ में चले जाएंगे। एक दृष्टि से दोनों वैकुंठों में कोई अंतर नहीं है, जिस प्रकार यहां भौम वृंदावन और वहां के गोलोक वृंदावन में कोई अंतर नहीं। लेकिन फिर भी ये वृंदावन या ये वैकुंठ वो है जो कि इस भौतिक सृष्टि के भीतर प्रकट हुआ है भगवान की इच्छा से। तो इसी प्रकार से ध्रुव महाराज को ऐसे बताया गया था, पहले यहां 36,000 साल, फिर ध्रुव लोक, और फिर मूल वैकुंठ जगत में।
और एक शंका थी जो विषय के बारे में था, कि विषय का एक ही अर्थ होता है, क्योंकि विद्यालय में भी बहुत बताते हैं ये विषय सामाजिक अध्ययन विज्ञान, तो उस विषय को हम लोग
वो अलग है। लेकिन केवल अगर उन विषयों को हमने भगवान की सेवा में इस्तेमाल नहीं किया तो वो भी विषय ही बन जाएगा। विषय मतलब सब्जेक्ट, हमारे ध्यान का केंद्र। तो भोग के लिए हमारे ध्यान के केंद्र बन जाएंगे संसार की चीजें, तो वो भी हमारे विषय हो गए, अभ्यास के विषय, टॉपिक, सब्जेक्ट। तो अगर हमने इन विषयों का उपयोग भगवान की सेवा में नहीं किया तो वो जड़ विद्या हो जाएगा। तो स्कूल में कई बार जब बच्चे जाते हैं पढ़ने लिखने के लिए, सीखना चाहिए, क्यों? ताकि फिर वो गीता भागवत पढ़ सके, प्रभुपाद की किताबों को पढ़ सके। तो फिर ये साधारण नहीं होता, ये शिक्षा जो है फिर ये भक्ति से जुड़ा हुआ होता है। लेकिन अगर कोई लिखना पढ़ना सीखना जान चाहता है ताकि आगे चल के वो बहुत कमा सके, बहुत पैसे मिले उसे, बहुत भोग करे, तो फिर ये जड़ विद्या हो जाता है। लेकिन जब ये जड़ विद्या का संबंध भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से किया जाता है, फिर वो उसका शुद्धिकरण हो जाता है, वो आध्यात्मिक हो जाता है।
हरे कृष्ण प्रभु।
हरे कृष्ण।
पहला प्रश्न है, ध्रुव महाराज का जैसे हम नारद मुनि का सुन रहे हैं, जैसे पिछले जन्म में ने साधु लोगों को सेवा किया था इसलिए उनको इतना वैराग्य प्राप्त हुआ था, इसलिए अगली जन्म में वो भगवान के एक बहुत अच्छे भक्त बने। अभी अभी ध्रुव महाराज का संभावना देख रहे हैं, आप बता रहे हैं, लेकिन ध्रुव महाराज को इतना वैराग्य प्राप्त करने का चांसेस कैसे मिला उनको? इस जन्म में वो सिर्फ एक ही बार बोला था तुम विष्णु को प्रार्थना करो, लेकिन उतना वैराग्य लेके वो करने का कारण क्या था? दूसरी प्रश्न है, आप बोल रहे थे वो शुद्ध हो गए, शुद्ध होने के बाद भगवान तुम माया से भी परे रहे, माया आपको छूनेगा नहीं ऐसे बोल रहा है, तो शुद्ध होने के बाद माया से भी स्पर्श होने का संभावना है कि, तो ध्रुव महाराज का क्यों ऐसे एक पर दिया था भगवान?
दूसरा प्रश्न का पहला करेंगे उत्तर। भगवान ने ये आश्वासन दिया ध्रुव महाराज को कि अगर मैं जो वरदान देने जा रहा हूं तुम इस वरदान को इसलिए नहीं स्वीकार करना चाहते हो कि तुम डर रहे हो कि कहीं इस ऐश्वर्य का प्रभाव तुम्हारे भक्ति के ऊपर पड़ जाए, तुम माया में पड़ जाओ, तो मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं ऐसे नहीं होगा, तुम्हें चिंता नहीं करो, स्वीकार करो मैं जो दे रहा हूं। पहले ध्रुव महाराज चाह रहे थे बहुत कुछ, भगवान का दर्शन करने के बाद ये सब भौतिक इच्छा मिट गई। जब भगवान ने कहा कि वरदान लो, ध्रुव महाराज ने कहा नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। जब ध्रुव महाराज ने ऐसे नहीं नहीं कहा तो फिर भगवान ने कहा डरो नहीं, ले लो तुम, क्योंकि तुम मेरे पास आए थे इस इच्छा लेकर, तो वो कभी निष्फल नहीं होगा, तुमने मांगा था ना, तो मांगा था इसलिए मैं दे रहा हूं, अब तुम्हें तुम लो, लेकिन डरो नहीं। अगर तुम्हारे मन में यह डर है कि इस ऐश्वर्य को स्वीकार करके तुम मुझे भूल जाओगे, तो मैं कह रहा हूं कि ऐसे नहीं होगा, तो आश्वासन दिया ध्रुव महाराज को। भक्त को ऐसे ही होना चाहिए ध्रुव महाराज की तरह कि हमेशा वो सोचे कि ज्यादा मैं सब ऐश्वर्य मान सम्मान पद इत्यादि स्वीकार करूंगा तो मेरे लिए खतरा है। भक्त को हमेशा ऐसे सावधान रहना चाहिए। भक्त को यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं कितना भी ऐश्वर्य स्वीकार करूंगा, कितना भी ऊंचा पद स्वीकार करूंगा और इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं। भक्त को हमेशा सोचना चाहिए कि ये संसार में पदम पदम यद विपदाम न तेषाम, हमेशा खतरा रहता है। सबसे बड़ा खतरा क्या है कि हम भगवान को भूल जाएं, हमारे मन में घमंड आ जाए, हम ऐश्वर्य से प्रभावित होकर भोग वृत्ति फिर से बढ़ जाए हमारे हृदय में, ये सब बड़े बड़े खतरे हैं हमारे लिए। तो भक्त को हमेशा सोचना चाहिए कि इनसे मुझे बच के रहना चाहिए। जब भगवान कोई ऐश्वर्य भेजते हैं, कोई मान सम्मान भेजते हैं, कोई पदवी देते हैं, तो भक्त को सोचना चाहिए बहुत सावधानी से मुझे रहना चाहिए। और भी भक्त जो है अन्य भक्तों के शरण में जाता है जिससे कि उसकी सुरक्षा बनी रहे। अगर हम इन चीजों से सुरक्षा चाहते हैं तो हमें भक्तों के शरण में जाना चाहिए। भक्तों के समाज में दासानुदास बनकर हम रहेंगे, हम इस भावना से रहेंगे, तो फिर हमारी सुरक्षा है। तो इस ऐश्वर्य से पद से इत्यादि हम भ्रमित नहीं होंगे, प्रभावित नहीं होंगे। अगर हम अपने आप को कर्ता समझेंगे कि मैं भोगता हूं, मैं करता हूं, ये सब मेरे बल की वजह से, मेरे बुद्धि से, मेरी तपस्या से, मेरे जप तप से हुआ है, तो फिर खतरा है। जब हम दासानुदास भावना रखते हैं कि मेरी कोई योग्यता नहीं है, केवल मैं हर तरह शत प्रतिशत भक्तों के ऊपर निर्भर हूं और उनके मार्गदर्शन, उनके सहायता, उनकी कृपा के बिना मैं कुछ भी नहीं हूं, लेकिन उनकी सेवा के लिए मुझे ये पद स्वीकार करना पड़ रहा है, मुझे ये साधन या कोई सुविधा स्वीकार करना पड़ रहा है, तो फिर हम सुरक्षित रहेंगे। तो ये ध्रुव महाराज की भावना थी। ठीक है, पूर्वज ध्रुव महाराज ने पूर्व जन्म में भी ऐसी कोई सुकृति हुए होंगे जिसकी वजह से वो इतनी दृढ़ता पूर्वक भगवान की सेवा कर सके, एक बार कहने पर वो कर पाए। नहीं तो देखते हैं हम यहाँ भी हमारी भक्ति में हमें बार बार सुनना पड़ता है ऐसा करो ऐसा करो, फिर भी हम नहीं कर पाते हैं, है ना। सुबह जल्दी उठना हो या रोज अच्छी तरह से माला जप करना हो या किताबें पढ़नी हो, हम कितनी ऐसी चीजें हैं जो बार बार सुनने पर भी हम आसानी से नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो हमारी सुकृति नहीं है। कई ऐसे लोग हैं जो आसानी से कर पाते हैं। तो ध्रुव महाराज ने एक बार सुना अपनी माँ से कि जाओ केवल नारायण ही तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकते हैं, निकल पड़े बस। अभी बाहर किसी लोगों को बताया चलो यहाँ पे हरे कृष्ण मंदिर है जाओ, 10 बार बताना पड़ता है ना, जाओ जाओ जाओ, और भक्तों को भी बताना पड़ता है तो दूसरों की बात तो दूर है ना। तो ध्रुव महाराज ने जो एक बार सुनकर तुरंत वो चले गए और इतनी दृढ़ता से भक्ति की, भगवान की सेवा की, तो इसका मतलब है कि पूर्व जन्म में ऐसे कोई दृढ़ता पूर्वक उन्होंने सेवा की होगी। ये दृढ़ता आना, डिटर्मिनेशन ये आना भी कोई साधारण बात नहीं है। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते मोहद्वन्द्व निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः। दृढ़व्रता, दृढ़ व्रत लेकर कौन भक्ति कर सकता है, जब उसके पाप क्षीण हो जाते हैं, जब उसकी सुकृति की पूंजी पर्याप्त मात्रा में बढ़ जाती है। ये शाम तू अंतकतम पापम, पाप नष्ट हो जाते हैं, और पुण्य कर्मणाम, पुण्य पूंजी, कर्मों की, पुण्य कर्मों की पूंजी बढ़ जाती है, तब वो दृढ़ता आ जाती है। कौन से पुण्य कर्म? भक्त्योन्मुख सुकृति, भक्ति के पुण्य, साधारण भौतिक पुण्य नहीं। तो ध्रुव महाराज भी अवश्य पहले भी भक्त थे, नहीं तो इतनी छोटी उम्र में इतनी दृढ़तापूर्वक भक्ति भला कैसे कर पाते। ठीक है, यहां एक आखिरी प्रश्न है कि अगर कोई भक्त ऐसे कोई चीज को चाहता है जो कि बाहरी दृष्टि से भौतिक लगे परंतु वास्तव में ये आध्यात्मिक प्रगति के लिए है, तो क्या ये इच्छा गलत है? ये चीज वास्तव में हमारे आध्यात्मिक प्रगति के लिए है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करेंगे? भगवान करेंगे। तो अगर हम सोचते हैं कि मैं ये चाहता हूं जिससे मेरी आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर सकूंगा, लेकिन भगवान सोचते हैं कि नहीं, इससे प्रगति नहीं होगी, इसका पतन होगा इस देने से, तो भगवान नहीं करेंगे। तो अगर मांगना भी है तो भगवान से ऐसे मांगना चाहिए कि हे भगवान, अगर आप सोचते हैं कि ये मेरे भलाई के लिए है तो आप इसको दे दीजिए। थोड़े इंश्योरेंस पॉलिसी करके हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, अगर आप सोचते हैं कि मेरे भलाई के लिए है, क्योंकि आखिर भगवान के साथ कुछ प्रार्थना कुछ तो करना चाहिए। अगर आप सोचते हैं कि ये मेरे भलाई के लिए नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, भगवान को अपने भक्त का पतन कराना उसके प्रायश्चित के लिए, उसके उसके शुद्धिकरण के लिए ये आवश्यक है। प्रश्न का अर्थ ये है शायद कि उसका पतन किए बिना क्या उसका शुद्धिकरण नहीं करा सकते, यही प्रश्न होगा शायद। कि जब किसी भक्त के हृदय में ऐसी कोई भावना आती है और उसका वो दुरुपयोग करता है तो उसका पतन कराना आवश्यक है क्या? नहीं, परंतु शुद्धिकरण होगा। कैसे? तरह तरह से डंडा मिलेगा भगवान का, भगवान भी कान पकड़ेंगे तरह तरह से, फिर वो भक्त खुद अपने कान पकड़ेगा, और नहीं करूंगा कभी मैं।